anovat došlok milke a tais o intisnembe. Shastron me gyan ka param udeshya Bhagavan Sri Krishna hai. Yagya karne ka udeshya unhe hi prasann karna hai. Yog unhi ke sakshatkar ke liye hai. Sare sakam karm antata unhi ke dwara puruskrit hote hai. Ve param gyan hai aur sari kathin tapasyaan unhi ko janne ke liye ki jati hai. Unki prem purna seva karna hi dharm hai. Ve hi jivan ke charam lakshya hai. Tatparya. In do shlokon mein pushti hui hai ki Bhagavan Sri Krishna hi ek matra pujya hai. Vaidik sahitya ka bhi lakshya hai ki Bhagavan ke saath sambandh sthapit kiya jaye aur bhuli hui prem seva ko punar ujjivit kiya jaye. Yahi vedon ka saar hai. Isi siddhant ki pushti Bhagavan dwara Bhagavad Gita mein aapne hi shabdon mein is prakar ki gayi hai. Vedon ka charam udeshya keval unhe janna hai. Sare shastra Bhagavan dwara Srila Vyasadev ke sharir ke roop mein avatar lekar bhautik prakriti se bad patitatmaon ko Bhagavan Sri Krishna ka smaran karane ke liye nirmit kiya jate hai. Koi bhi devata bhav bhandan se mukti nahi dila sakta. Yahi samast vaidik granton ka nirnay hai. Nirvisheshvadi jinhe Bhagavan ka gyan nahi hota Bhagavan ki sarva shakti mata ko kam karte hain, kyunki ve unhe anya samast jivon ke saman batate hain. Isi karan se nirvisheshvadiyon ko bari hi kathinai se bhav bandhan se mukti milti hai. Ve anek janmon tak divya gyan ka anushilan karne ke baad hi unki sharan mein ja pate hain. Koi ya tark kar sakte hai ki vaidik karm yagyik anushtanon par tike hai. Ya sach hai. Kintu aise sare yagya Vasudev ki vastavik anubhuti ke liye bhi hote hai. Vasudev ka anya naam yagya hai. Aur Bhagavad Gita mein ya spasht kaha gaya hai ki sare yagya tatha karam yagya ya Bhagavan Vishnu ko prasanna karne ke liye hi kiye jane chahiye. Yahi baat yog padati par lagu hoti hai. Yog ka arth hai Parameshwar se sampark sthapit karna. Kintu is vidhi mein asan, dhyana, pranayama jaisi sharirik kriyang samilit rehti hai aur ye sab paramatma swarup antaryami Vasudev par dhyan kendrit karne ke nimit hoti hai. Paramatma sakshatkar to Vasudev ka angshik satshatkar hai aur yadi koi is prayas mein safal hota hai to usse Vasudev ka purna sakshatkar hota hai. Kintu adhikansh yogi durbhagyavash sharirik vidhi se prapt yogik shaktiyon ke dwara vipat ho jate hain. Aise durbhagyashali yogiyon ko agle janme mein vidvan brahmanon ya sampann vaishyon ke kul mein जन्म मिलते हैं, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाने हैं, तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार की जाते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान के पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को लगभग भूल जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान अनुशीलन है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के 18 प्रकरण है। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयमी बन जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाते हैं और जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु के कष्टों से अवगत हो जाते हैं। सारा ज्ञान अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्ति में जाकर समाप्त होते हैं। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। जो ज्ञान अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का परम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ है भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों को बनाए रखना, अतः तीनों तापों को बनाए रखना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन की दीर्घता ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, तो कष्टमय जीवन का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यही हल समस्त तपस्याओं का है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना, इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनीतिज्ञ भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं, यह वास्तविक तपस्या नहीं है। मनुष्यों को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाओं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की विधि यही है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजो तथा तमोगुणी मानी जाती है। काम तथा अज्ञान से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। सात्विक गुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के माता पिता वासुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, अतएव वे समस्त जीवों के आदि जीव है, वे ही समस्त भोक्ताओं के आदि भोक्ता है। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसे कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। उन्होंने वासुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनका पुत्र बनाना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करने है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जाननी चाहिए। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसे विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी विविध है, उनकी अंतरंग शक्तियां श्रेष्ठ होती है और बहिरंग शक्तियां निकृष्ट। भगवद गीता में उन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंग शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला विस्तार श्रेष्ठ होते हैं और बहिरंग शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होते हैं। जीवात्मा भी उन्हीं की विस्तार अंश है। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंग शक्ति के विस्तार से उद्भूत है, वे नित्य मुक्त होती है, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होती है वे नित्य बद्ध है। अतएव ज्ञान तप त्याग तथा कर्म का सारा सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलाने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, अतएव प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंग शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह होते हैं कि ऐसे विशाल हृदय लोग बिना विचलन के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का भी अभिमत है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाए। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ स्वरूप है। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता है जो संसार की बाह्य व्यवस्था की देख देख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव की भी गणना देवताओं में रहते होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे जगत के सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आते हैं तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस जगत के नियमों से परे होते हैं। ओम ज्ञानतिमिदंधस्य ज्ञाननिरंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयतः करकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशतान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीराधा सह श्रीमदन मोहन श्रीराधा सह श्री गोविंद चरण श्रीराधा सह शील श्री गोपीनाथ एन ठाकुर हरि गौरियानाथ एन ठाकुर गौरिया के करिया चिनाथ सत चीने चरण बंधु चीने मरनाथ। तो इस तात्पर्य लंबा ही नहीं, लंबा ही नहीं। तो वासुदेव का वर्णन असंख्य पुस्तक में पूर्ण नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत भगवान वासुदेव कृष्ण का ग्रंथ स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ग्रंथ, किताब है, कागज है, छापना है, अक्षर है, साधारण पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, परिका, धाम, वैशिष्य, अवतार, भक्तगण और सबका वर्णन है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत वासुदेव से अभिन्न है। तो महत्वपूर्ण श्लोक है, तो सब श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ है जो हमारे लिए जो अज्ञान तिमिरंत का प्रभाव से वासुदेव का दर्शन सदैव नहीं मिलते, तो हमारे अंकों को खुलाने के लिए तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका समझने से हम सदैव सर्वत्र सर्वथा रूप में वासुदेव, जिनका नाम का अर्थ है वासुदेव, वे सर्वत्र वास करते हैं, वो सर्वव्यापी है। तो कैसे हम सदैव सर्वत्र भगवान वासुदेव का दर्शन मिल सकते हैं? इस श्लोक में कुछ दिग्दर्शन है, इसलिए ये श्लोक महत्वपूर्ण है, और इसलिए श्रील प्रभुपाद हमारे परिप्रेक्ष्य से थोड़ा दीर्घ तात्पर्य दिया है। और अनंत देह का परिप्रेक्ष्य से ये तात्पर्य तो कुछ नहीं है, क्योंकि अनंत देव भगवान का अवतार है या अंश स्वंश। भगवान के दो प्रकार के अंश है, तो सब जीव भगवान के भगवान विष्णु वासुदेव के विभिन्न अंश, वे अनु है अर्थात इनकी शक्ति बहुत कम है। वे वासुदेव के अधीन है और स्वाधीन वासुदेव श्री कृष्ण के असंख्य अवतार है, अवतारम ही असंख्ययम, वो सब वासुदेव के विस्तार है, जिनमें एक वो स्वंश कहते हैं स्व अंश। तो सब जीव भगवान वासुदेव के अंश है। ममाय वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब जीव कृष्ण के अंश है, दिव्य अंश, मतलब वो जीव और भगवान समकक्ष नहीं है, समान नहीं है। तो स्वंश का मतलब विष्णु रूप, असंख्य विष्णु रूप है, जिनमें अनंत देह एक है, जिनके असंख्य फन है और असंख्य मुख है, और अनादि काल से वे असंख्य श्रीमुख के द्वारा भगवान वासुदेव का वर्णन करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, और कभी भी एक गुण एक लीला एक वर्णन तो कभी भी दो बार दोहरा नहीं करते हैं। तो फिर भी अनंत काल में अनंत प्रकाश से अनंत उत्साह से अनंत क्षमता से भगवान वासुदेव का कीर्तन करके भी तो उसका अंत नहीं मिलते हैं, इसलिए उनका नाम है अनंत। तो वास्तव में ये श्लोक का वर्णन करना तो सब जीव का कर्तव्य है। और बल्लभ विद्यानागम है जिसमें ये सब स्कूल कॉलेज ये सब है, तो उसमें वासुदेव की प्रशंसा करना चाहिए। तो सब किताब स्कूल बुक जो है इंजीनियरिंग मेडिसिन इत्यादि, तो वो सब फेंक देना चाहिए। एक्चुअली वो सब एक मशीन है, नहीं वो श्रेडिंग मशीन, तो वो किताब उसमें डालना है और खाली वो क्या बोलते हैं वो श्रेड्स आते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ टुकड़ा, लेकिन वो टुकड़ा से फिर कागज उत्पादन करने, और उस कागज में श्रीमद् भागवत छपाना चाहिए वासुदेव की प्रशंसा। फिर ये एक्चुअली वल्लभ विद्यानागर, तो वल्लभ मतलब कृष्ण, तो वल्लभ की विद्या के बारे में वो सब स्कूल कॉलेज तो उसी काम में व्यस्त होना चाहिए। और सभी पुस्तक सभी वो हर रोज वो इतना सा अखबार न्यूज़पेपर आते हैं, नहीं वो गुजरात समाचार दैनिक भास्कर और क्या है इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया, तो सब न्यूज़पेपर में भी केवल वासुदेव का वर्णन करना चाहिए और कुछ नहीं। हमारा परमाराध्य পরম গুরুদেব শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কলকাতাতে এক দৈনিক সমাচার পাত্র চালায়া, দৈনিক নদিয়া প্রকাশ নাম থা, নেই কলকাতাতে নেই, কৃষ্ণনগর নদিয়া জেলা মে। তো এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও স্বরাজ আন্দোলন কা নেতা মদন মোহন মালবীয়, মদন মোহন মালবীয়। তো শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সে পুছে, তো দৈনিক সমাচার আধ্যাত্মিক বিষয় পর তো কেসে হো সকতে। তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কা উত্তর হ্যাঁ কি এই কলকাতা এক ছোট সা জায়গা হ্যাঁ, মতলব পৃথিবী মে এক মহান শহর হ্যাঁ, লেকিন পৃথিবী ক্যা হ্যাঁ জগত মে, এই পৃথিবী তো এক খন্ড জৈসে। হম রাস্তা মে যাতে হ্যাঁ কুচ ধূল কা খন্ড আতে হ্যাঁ, তো জগত মে ইস পৃথিবী কি স্থিতি এক ধূল কা খন্ড জৈসে। ওর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড হ্যাঁ, ভৌতিক সৃষ্টি মে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড হ্যাঁ, ও এই পুরা ভৌতিক ওই সব ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড মিলকে তো ও এক বন্দী গৃহ, এই শব্দ তৎপর্য মে বন্দী গৃহ কায়দ খান জেল জৈসে অবাস্তবিক জগত হে, বাসুদেব কা আধ্যাত্মিক জগত। তো ইস ছুচ কলকাতা কে বারে মে তো সমাচার যো নিকালতে হে, তো ইস অতি সামান্য কলকাতা যো এক কলকাতা এক শহর যো এক লোক মে হে পৃথিবী মে, ও এই পৃথিবী তো এক ব্রহ্মাণ্ড মে হে, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড হে ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড, ও এই সব ব্রহ্মাণ্ড তো ল্যাট্রিন জায়সে হে, ওর ইস কলকাতা মে ও সময় বিশ সে অধিক সমাচার দৈনিক সমাচার পত্র নিখলে। তো ভক্তি সরস্বতী ঠাকুর বলে কি তো ইস ভৌতিক ভৌতিক খবর কে লিয়ে তো ইতনে সে সমাচার পত্র হৈকুণ্ঠ বাসুদেব কে জগত ইস ছুট জগত সে ওর বহুত হি বিশাল হ্যাঁ, ও খবর আনন্দ আনন্দময় খবর হ্যাঁ। কলকাতা মে এক সমাচার পত্র তো আবি তক চালু হ্যাঁ, আনন্দ বাজার পত্রিকা, লেকিন কহাঁ হ্যাঁ আনন্দ ইস পুরা ভৌতিক জগত নিরানন্দ বাজার হ্যাঁ, দুঃখ কা বাজার হ্যাঁ, দুঃখ কা বাজার বাজার মে বিনিময় হতে নেই। তো ভৌতিক জগত মে ক্যা হতে তো বিনিময় হতে, এক ব্যক্তি কো কুচ দেতে হ্যাঁ ও কুচ লেতে হ্যাঁ, ও পুরা ফল পুরা পরিণাম ক্যা হতে হ্যাঁ দুঃখ। মাধব হম পরিণাম নিরাশ চাচল সাইকতে বিন্দু বারি বিন্দু সম সুতমিত রমণী সমাজ, ইস ভৌতিক জগত तो मरस्थल में एक बूंद का पानी जैसे वो भौतिक सुख जो सूत मित्र रामानी समाज कुटुंब रामानी अर्थात नारी सूत सूता सूत मित्र मित्रों तो उस सुख जो हम मिलते हैं ये सब बंधु और स्वजनों से वो मरस्थल में एक बूंद का पानी जैसे है। इसलिए माधव हम परिणाम निराश हम इतने सब प्रयास करते हैं सुख मिलने के लिए लेकिन परिणाम में हम निराश होते हैं। तो इस दुखमय जगत के बारे में इतने से समाचार आते हैं और आजकल उस समाचार पत्र विशेषकर रविवार को तो एक ग्रंथ जैसे है जो इतने से मोटे होते हैं। तो एक विभाग है तो अंतर्देशीय समाचार फिर अंतर्राष्ट्रीय समाचार खेल का समाचार फैशन का समाचार तो कितना विभाग है और फिर कुछ चिल्ड्रन सेक्शन भी है तो बच्चे का विभाग है तो ऐसे इतना मोटी होती वो समाचार पत्र और सब बकवास है। तो अगर इस भौतिक जगत के बारे में इतना सा समाचार निकाल जाते हैं तो वास्तविक आनंदमय वासुदेव वैकुंठ के बारे में तो कितने से समाचार निकालना चाहिए। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तो दैनिक पत्र है हम हर एक सेकंड में एक नया समाचार पत्र निकाल सकता लेकिन पाठक नहीं है। पाठक है भौतिक दुख समाचार के लिए। समाचार का मतलब अन्य व्यक्तियों का कष्ट और दुख यही समाचार है। तो देखिए क्या है आज का पत्र में क्या समाचार है मैं नहीं देखा बहुत दिन में क्या समाचार चल रहा है कोई नहीं जानते। हाँ ऐसा होते नहीं कुछ दुर्घटना या भूकंप या सुनामी या क्रांति बम ब्लास्ट तो सब समाचार तो केवल दुख का समाचार है नहीं। और हम वो उस प्रकार का समाचार पत्र उसमें हमारी रुचि नहीं है यही समाचार पत्र में हमारी रुचि है। ये सब आनंद का खबर है। वासुदेव वासुदेव परम ज्ञानम वाला विद्या है वासुदेव के बारे में ज्ञान तो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परायोग तो सब कुछ जो हम कहते वो अन्य अन्य प्रकार के धार्मिक विधि और अनुष्ठान है योग यज्ञ तपस्या ज्ञान इत्यादि लेकिन वो सब धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र केंद्र बिंदु भगवान वासुदेव होना चाहिए। योग तो आजकल लोग योग करते हैं क्योंकि कुछ काम नहीं करते हैं तो दिन मतलब शारीरिक काम कुछ नहीं करते हैं तो दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं इसलिए तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और बीपी होते, इसे योग व्यायाम करते शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। किंतु वास्तव में योग का उद्देश्य है भगवान वासुदेव का साक्षात्कार करना। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगियां ध्यान से भगवान वासुदेव का मधुर रूप का दर्शन प्राप्त करते हैं सिद्ध योगी। और भक्ति योगी तो उस प्रकार के अष्टांग योगी से और बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि वो उस प्रकार का ध्यान करने में बहुत कष्ट होते हैं, बहुत तपस्या लेना पड़ते हैं, तो फिर भी वो फल निश्चित नहीं है। वो योग मार्ग में बहुत अंतराय है, एक है कि तो अच्छी तरह बैठना वो भी कठिन है, फिर मन को दमन करना बहुत 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 ही कठिन है, फिर बीच में अगर योग अभ्यास करने से कुछ सफलता होते हैं तो योग सिद्धि होते हैं, और योग सिद्धि प्राप्त करके ये एक्चुअली ये सब योग सिद्धि माया का पुरस्कार है, जिससे योगियां योग का लक्ष्य अर्थात मुक्त होना भूल करते हैं। तो वास्तव में योग का चरम लक्ष्य है वासुदेव का साक्षात्कार। लेकिन अधिकांश योगियां वासुदेव का रूप पर ध्यान करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि ये रूप किसी वासुदेव की सेवा करना सभी प्रकार के योग की चरम सिद्धि है, और विचार करते हैं कि ये वासुदेव रूप पर ध्यान करना केवल एक उपाय है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। किंतु कि वासुदेव की सेवा करना वो उपाय है, अर्थात वो उपाय पालन करने से प्राप्य वस्तु तो नहीं जानते। इसलिए भक्ति योगियां ध्यान योगी अष्टांग योगियों से और बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि आरंभ से जानते हैं कि वासुदेवं परम ज्ञानम, वासुदेव क्या है परम तपः, तो वासुदेव ही तपस्या सभी प्रकार का तपस्या करने का लक्ष्य है। तो अगर हम यही सारा बात समझते हैं तो कठोर तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो हरि कीर्तन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नाम उच्चारण करने से तो सब फल जो तपस्या योग वानाश्रम धाम पालन करना यज्ञ करना इत्यादि, तो ये सभी प्रकार के अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान पालन करने से चरम फल जो है वासुदेव का साक्षात्कार, तो आसाने से भक्ति योग से मिलते हैं। तो इसलिए वो सभी प्रकार के अन्य धार्मिक उपाय पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। नारद मुनि, नारद पंचराज, वे परम योगी है, योग सिद्धि है अर्थात, तो जिधर भी जाना चाहते हैं तो जाते हैं, सिद्ध योगी है, लेकिन हार जाएगा जाके तो वासुदेव के गुणगान प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि तो अंता बह्य यदि हरिस तपसा तथा किम, यदि हम अंदर में और बाहर भी वासुदेव का साक्षात्कार वासुदेव का दर्शन करते हैं तो तपस्या करने का आवश्यकता है। और नान्ताबहि यदि हरिस तपसा तथा किम, और यदि तपस्या करके भी हम वासुदेव का साक्षात्कार वासुदेव का दर्शन अंदर में और बाहर में नहीं मिलते तो तपस्या करने से क्या फल हो। तो दोनों विचार, तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति योग में थोड़ा सा तपस्या है, वो तपस्या भी नहीं है, लेकिन तपस्या का मतलब स्वेच्छा से कुछ शारीरिक कष्ट ग्रहण करना जिससे हम कुछ विशेष फल मिल सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु रावण आदि राक्षस भगवत द्वेषी भी महान तपस्वी थे, और तपस्या करने से शक्ति मिली, तो वो शक्ति मिलके तो अन्य विश्ववासियों को परेशान दे। तो उस प्रकार का तपस्या नहीं करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए जिससे मन स्थिर होगा भगवान की सेवा में। और तपस्या का मतलब सब कुछ करना जिससे हमारी सभी कार्यकलापों से भगवान संतुष्ट होंगे। तो वास्तव में वो तपस्या नहीं है, किंतु भौतिक स्थिति में हमारी पाप बुद्धि है और हमारी इच्छाएं है, सब कुछ करना अपना इंद्रिय सुख के लिए। तो तपस्या का मतलब वो इंद्रिय सुख बंद करना और सब कुछ कृष्ण के लिए करना। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भक्ति का अर्थ है तो सब प्रयास अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना, तो कृष्ण की दिव्य इंद्रियों तर्पण करने के लिए, वो ही भक्ति। तो इसलिए जो तपस्या, जो भक्ति में हम तपस्या बोलते हैं, वो वास्तव में तपस्या नहीं। क्या तपस्या है? तो कम से कम ये चार नियम पालन करना चाहिए। तो मांसाहार, प्याज रसून इत्यादि चरण और केवल शुद्ध कृष्ण प्रसाद सेवन करना। हम नहीं बोलते हम खाना खेंगे, हम नहीं बोलते खाना खेंगे मतलब मेरा इंद्रिय सुख होगा। हम प्रसाद सेवा करते हैं, वो भी सेवा है। प्रसाद हमारा, कृष्ण प्रसाद हमारा भोग्य वस्तु नहीं है। तो भक्ति का प्रारंभ है तो जिसमें हम हमारी रुचि है वो हॉट लॉरी से कुछ पकौड़ी लेके और खाएगा, तो वो रुचि जब तक उस प्रकार की रुचि होती तो तब तक सुस्वादु स्वादिष्ट प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि भोगते हैं भगवान और हम इनका प्रसाद लेते हैं क्यों, क्योंकि वो एक प्रकार की सेवा है और जिससे शरीर की पुष्टि होगी, जिससे हम यथेष्ट बल मिलेंगे श्री कृष्ण की और सेवा करने के लिए, इसलिए प्रसाद सेवा करना चाहिए। तो ये प्रसाद सेवा है, तो हम प्रसाद में प्रसाद हम नहीं कहते हैं, हम प्रसाद जो श्री कृष्ण से अभिन्न है तो उसकी सेवा हम करते हैं। तो यही भक्ति योग है। तो भक्ति योग में तपस्या है प्रसाद सेवा, तो वो क्या तपस्या है? एक प्रकार तपस्या है, एक प्रकार से तपस्या है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में प्रसाद सेवा करना है और केवल प्रसाद सेवा करना है। तो जो हॉट लॉरी से मिलते हैं तो वो प्रसाद नहीं है, तो उसको खाना नहीं है। तो ये संकल्प करना है कि कृष्ण प्रसाद के बिना हम और कुछ नहीं लेंगे। तो यही तपस्या है कि हम दुकान से ब्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि विषय अन्न खाई दुष्ट है मन, तो वो वेजिटेरियन है नहीं, आशा है कोई ठिकाना नहीं है, तो लगते ही वो वेजिटेरियन है, लेकिन अभक्त बनाया हुआ है, अभक्त के हाथों से बनाया हुआ है। तो भगवान वो ब्रेड ग्रहण नहीं करते। प्रसाद का मतलब जो प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करना है, और जो प्रसाद भगवान की कृपा, प्रसाद का मतलब कृपा, भगवान की कृपा से, इनकी कृपा से सब कुछ जो हम इनको अर्पण करते वो सब कुछ लेके हमको वापस देते हैं प्रसाद के रूप में। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः इसका मतलब है इस शुद्ध भक्त, भक्तजन जो सब नियम पालन करते हैं, तो और भक्ति पूर्वक भगवान को फल फल जल इत्यादि अर्पण करते हैं, तो वो ही कृष्ण प्रसाद है। तो मंत्र बोलने से साधारण खाना तो प्रसाद नहीं होता, ऐसा नहीं है एक प्रकार का जादू। तो ये चपाती है बाबा 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 कुछ मंत्र कहने अभी प्रसाद है, निकाल दो सबको बंद, ऐसा नहीं है। भक्ति होना चाहिए, भक्ति से ही भगवान आकृष्ट होते। तो ऐसा नहीं है कि हम बाजार से सभी प्रकार की चीज लेके उसको कुछ मंत्र कहने से प्रसाद बन सकते, नहीं, प्रसाद है कृष्ण प्रसाद। हम ऐसे बोलते ये डिवोटीज प्रसाद है, गेस्ट प्रसाद है, वो सब कृष्ण का प्रसाद है। तो ये बुद्धि, ये भावना भक्ति भावना है, और इस भक्ति भावना से योग ज्ञान यज्ञ इत्यादि पूर्ण होते हैं। और ये सब धार्मिक अनुष्ठान में यदि ये भक्ति भावना रांच मात्र भी नहीं है तो सब असफल होते हैं। भक्ति होना चाहिए, और वास्तव में जो इतने सब भाग्यवान है कि आरंभ से समझते है कि वासुदेव ही जीवन के लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, तो एक ही लक्ष्य है। भक्ति जीवन का एक अंश नहीं है, भक्ति ही जीवन है। भक्ति के बिना हम सब शव जैसे हैं। वो एक श्लोक क्या है, अप्राणस्य एव देह भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपः अप्राणस्य एव देहस्य मंदनम लोक रंजनम। तो भक्तिहीन, अगर हम भक्तिहीन हो तो हम जितने भी कुलीन हो, जितने भी बुद्धिमान हो, जितने भी शिक्षित हो, जितने भी धनवान हो, तो ये सब धन यश रूप इत्यादि वो सब अलंकार आवरण है। वो ये दृष्टांत है कि वो सब धन यश इत्यादि शव का श्रृंगार करने जैसे है। तो दूर से अगर हम एक व्यक्ति को देखते हैं तो कुर्सी में बैठ रहा है और बहुत सुंदर देखते हैं, तो बहुत अच्छा ड्रेस है और ऐसे फुल मावा है और सेंट भी लगाए है, अच्छा खुशबू आते हैं और अच्छा सूट पहन रहे हैं और गोल्ड चेन भी है, तो थोड़ा दूर से तो बहुत अच्छा व्यक्ति जैसे ही देखते, तो थोड़ा नजदीकी आने से देखते कि वो एक्चुअली शव है, मार गया है आदमी। तो फिर तो अगर एक बहुत सुंदर जैसे देखते आदमी तो ऐसे देखते तो कुछ आकर्षण होते, फिर जब हम देखते हैं कि वो शव है तो आकर्षण नहीं होते, तो ऐसे निघृण्य होते, ओ क्या है, फिर हम भाग जाते। तो अप्राणस्य एव देहस्य मंदनम लोक रंजनम, तो लोक रंजन हो सकते एक शव को श्रृंगार करने से, लेकिन शव तो शव ही है, कुछ काम नहीं कर सकते। तो हम इंटरव्यू कर सकते हैं, तो मिस्टर पटेल आपका क्या राय उसके बारे में, देखते हैं आप एक महान व्यक्ति है तो गोल्ड चेन है, अच्छा सूट है, तो जवाब नहीं देते क्यों, क्योंकि वो शव है, मार गया आदमी है। तो ऐसे ही धन यश पोजीशन पांडित्य शिक्षा, तो ये सब अलंकार है, लेकिन अगर प्राण नहीं है तो सब का कोई अर्थ नहीं है। तो जीवन का प्राण है, जीवन का अर्थ है भगवत भक्ति। तो ये सब अगर नहीं हो तो सब कुछ खाली है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। तो वल्लभ विद्यानागर में सबको बताना चाहिए कि विद्या है वल्लभ वासुदेव, योग है वासुदेव, ज्ञान है वासुदेव, जीवन का लक्ष्य है वासुदेव। तो आप सब वासुदेव के परम भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से और वासुदेव के रूप जो विद्यानागा में प्रकट है श्री श्री राधा गिरिधारी की कृपा से, अभी आप सभी लोगों की रुचि है वासुदेव की सेवा में, तो ये सेवा करो तो वल्लभ विद्यानागर में तो हर घर जाके सबको बताए कि वल्लभ विद्या प्राप्त करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत ले लो। हरे कृष्ण। वासुदेव भगवान की जय, वल्लभ भगवान की जय, श्री श्री राधा गिरिधारी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर कुछ प्रश्न हो तो जरा सा मले अगर एक घर में सब मत्स्य भोजी है, मछली खाने वाले बंगाली या ओरिया मांस नहीं खाते, बहुत बहुत बंगाली वैष्णव बोलते कि मैं बहुत साल बांग्लादेश में था और बहुत लोग मुझे बताए कि हम मांस अंडा हम कुछ भी नहीं खाते, कभी भी मछली कभी कभी और हम ज्यादा मछली नहीं खाते, ज्यादा चावल लेते और उसके से थोड़ा सा मछली, ज्यादा नहीं। तो प्रश्न क्या है, अगर वो सब मत्स्य को प्रेम करते हैं, मत्स्य को कृपा करते हैं, मत्स्य का रूप मत्स्य का आकार खाने से, तो हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना? भक्त कृष्ण भक्त मछली का भक्त नहीं है। घर में रहना पड़ता है तो मुश्किल होगा, तो सबको बताए कि आप जो इस जीवन में कहते हैं तो उस प्रकार का रूप आप मिलेंगे अगला जीवन में, तो बताइए अगर नहीं सुनेंगे तो मुश्किल होगा। तो एक सुझाव है, अगर मंदिर के नजदीकी रहते हो तो मंदिर का प्रसाद लो, या अलग रसोई करो अलग से। और एक सुझाव है, लेकिन अगर भक्त होने की इच्छा है तो मांस मत्स्य अंडा ये सब खाना तो नहीं चलेगा। ये आपकी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में हम अलग बात कर सकते हैं, तो सब लोग के बीच में बोल, मतलब इसमें बहुत डिटेल्स है ना, तो अच्छा हो आप ये सब भक्त से पूछिए और डिस्कस कीजिए और फिर निर्णय कीजिए क्या करना चाहिए। अभी प्रश्न हो
जैसे देवी देवता है ये
क्या युग
देवी देवता सर ये सब वैष्णव है सर भगवान का तो उनको जो भोग लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको भोग लगाते हैं तो वो सीधा का भोग ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते।
वो अविधि पूर्वक है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देव देवी की पूजा मेरे लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए। तो सब देव देवियों के उपासक तो वास्तव में मेरी उपासना करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक, अच्छा अर्थात अन्याय से। ये पी अन्य देवता भक्त यजंती श्रद्धयान्वित ते पी माम एव कौन्तेया यजंती अविधि पूर्वकम्। तो वो ठीक सिस्टम नहीं है। ठीक सिस्टम है अगर देव देवियों की पूजा करना है तो पहले भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण करके विष्णु प्रसाद देवताओं को अर्पण करना। तो वे अगर भक्त हो तो भक्तजन का संकल्प है कि हम कृष्ण प्रसाद के बिना कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो वो इसलिए प्रभुपाद बोले कि वो कलकत्ते में बहुत क्या बोलते कसाई बुच्चर शॉप कसाई खाना है और दुकान में काली की मूर्ति रखते और बोलते ये सब काली प्रसाद है, ये सब मांस। तो प्रभुपाद बोले कि काली है शंकर महादेव की पत्नी है और सती पत्नी तो केवल पति का उचिष्ट रहते हैं और शंकर महान भक्त है और वे केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो काली तो केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं, महादेव के उचिष्ट जो कृष्ण भगवान के उचिष्ट है। तो ये सब मांस जो कसाई दुकान में बोलते बोलते ये काली मंदिर है, ये सब काली प्रसाद है। तो क्या है वो काली के पार्षद है भूत प्रेत राक्षस इत्यादि। तो वो सब भूत का प्रसाद है, काली को अर्पण करना है और ये सब भूत लेते हैं और भूत का प्रसाद है। तामसिक हरे कृष्ण। और शिव शिव का मृत्यु तो शिव तत्व बहुत विशाल है। आप उस प्रकार का प्रश्न करते हैं, शिव के बहुत रूप है। तो कुछ रूप है जो सनातन और कुछ असनातन है। तो शिव का मूल रूप है सदाशिव वैकुंठ विष्णु रूप और इस भौतिक जगत में शंभु है और रुद्र के अनेक रूप है, बहुत रुद्र रूप है और वो रुद्र रूप जीव है और वो रुद्र रूप का मरण होते हैं, लेकिन वो आदि शंकर का मरण नहीं होते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन महेश श्याम तो वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ का बहा। तो महेश धाम उसका सृष्टि है और वो ब्रह्मा जी का जीवन का अंत वो भी महाविष्णु का शरीर में लीन हो जाते हैं। तो महेश धाम तो जीव का चरम स्थल नहीं है, जीव की चरम स्थिति है वैकुंठ धाम में, वही वैकुंठ धाम है। सदाशिव सदा सदैव वैकुंठ में है, तो महेश की स्थिति वो सदा शिव में लीन हो जाते हैं, और मतलब क्योंकि शिव का कार्य है भौतिक जगत में, वो शिव जो इस भौतिक जगत में प्रकट है, तो इन महाप्रलय का समय वो शिव की अस्तित्व सदा शिव में लीन हो जाते हैं, और फिर जब सृष्टि मतलब बुद्धा बुद्धा प्रलीयते, जब फिर सृष्टि होते तो फिर वो शिव जो एक सनातन व्यक्ति है तो इनका फिर प्रकटी होती है। हाँ ठीक है, तो विष्णु भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड में भी है, नहीं वैकुंठ जगत भी है, इस भौतिक जगत में है। वैकुंठ इस भौतिक जगत में है, लेकिन वो वैकुंठ जो इस भौतिक जगत में है, इस भौतिक जगत का महाप्रलय का समय वो वैकुंठ का नाश नहीं होते हैं, तो लेकिन इस मतलब क्या बोलते हैं, इस भौतिक जगत एक बात है कि वैकुंठ तो कभी भौतिक जगत में है और नहीं है, विष्णु भगवान भौतिक जगत में आते तो फिर भी नहीं है, तो उस प्रकार वैकुंठ जगत तो भौतिक जगत में प्रकट होने के पर तो नहीं है, और ऐसे वैकुंठ धाम जैसे तो उसी स्थिति क्या बोलते इट रिमेन्स, तो फिर चालू होते महाप्रलय के बाद भी, तो एक्चुअली इट हैज नो कनेक्शन विथ दिस मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन शिव की स्थिति विष्णु से, विष्णु की स्थिति से अलग है, वे विष्णु नहीं है और साधारण जीव भी नहीं है, लेकिन इनका कर्तव्य है भगवान की सेवा करने इस भौतिक जगत में, और सदाशिव तो सदैव, सदाशिव का मतलब मंगल, और सदाशिव है विष्णु, क्योंकि वो शिव जो इस भौतिक जगत में है तो अमंगल कार्य करते हैं, तो वे सदाशिव नहीं है, तमगुण के संचालन करते हैं। आई कैन गिव यू वन बुक इन बंगाली इफ यू कैन रीड इट, शिव तत्व। एक्चुअली ये सब गौरिया सूक्ष्म दर्शन ज्यादा है बंगाली में, गौरिया भाषा में, संस्कृत में भी है, और बहुत डिटेल्स है, आई एम ट्राइंग, और बहुत डिटेल्स गौरिया भाषा में मिलते हैं। उस शिव तत्व के बारे में इंग्लिश में दो पत्रिका है, वो कृष्ण कथामृत बिंदु, आपने देखा कृष्ण कथामृत बिंदु, ये एक अच्छा मैं ऊपर में देखूंगा, मैं अलमीरा में है कि नहीं, अगर नहीं आप ऑर्डर कर सकते, वो दो खंड था वो शिव तत्व के बारे में। शिव महान भक्त है, लेकिन अगर हम अवक परमेश्वर ज्ञान से इनकी पूजा करते हैं तो हमारी गति अशीव होती है।